Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Swayam ki kripa hai ki nahi tumhari? खाली दूसरे की कृपा के ऊपर भरोसा करते हो, आशा करके बैठे हो, अपनी कृपा है कि नहीं तुम्हारे पास? मैं अपनी मूर्खता से मुक्त हो जाऊं, ये तुम्हारी अपनी कृपा है। ईश्वर मेरी मूर्खता को हटा दे, इसका मतलब तुम अपनी कृपा नहीं कर रहे हो, अपना प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तो चलो, यह हर शब्द की व्युत्पत्ति किया है शंकराचार्य जी ने। परमात्मा को हर क्यों कहा? अविद्यादेर हरणात् परमेश्वरो हरः। उसको अमृत क्यों कहा फिर? अमृतम च तद अक्षरम च अमृताक्षरम, अमृतम ब्रह्म एव ईश्वर इत्यर्थ। क्योंकि अविनाशी जो ब्रह्म है, वही जो ईश्वर, वो अविनाशी ब्रह्म ही है। ईश्वर जो है वो अविनाशी ब्रह्म ही है, इसलिए कहा अमृतम अक्षरम। स ईश्वर क्षरात्मानव, वो जो अमृत स्वरूप जो हर नाम वाला ईश्वर है, परमात्मा है, वो क्या करता है? स ईश्वर क्षर आत्मानव प्रधान पुरुषो, और सांख्य क्षर आत्मा शब्द से वह परिचित नहीं होगा तो उसी की भाषा में समझा दिया है। क्षर आत्मा, क्षर और आत्मा कहने से सांख्य नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी भाषा अपनी ही है। तो हम क्या हिंदी में बोलेंगे तो अमेरिकन को क्या समझ में आएगा? तो उसके भाषा में बोलना पड़ेगा ना। वो तो प्रधान और पुरुष को तो जानता है, क्षर और आत्मा को नहीं जानता है। तो क्षर का अर्थ होता है प्रधान और आत्मा का अर्थ होता है पुरुष। तो सांख्य प्रधान और पुरुष को तो जानता है, क्षर और आत्मा को नहीं जानता, इसलिए शंकराचार्य जी ने क्षरात्मा का अर्थ कर दिया प्रधान पुरुषम, क्षरम प्रधानम और आत्मा पुरुष। क्षरात्मानव प्रधान पुरुषव ईशत इष्टे, दोनों का शासन करता है। कौन? अमृतम अक्षरम हरः देवः एकः। एकश्चित सदानंदा द्वितीय, एक का अर्थ किया चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप और अद्वितीय, ये तीनों परमात्मा के स्वरूप है, तटस्थ नहीं है। क्योंकि परमात्मा के दो लक्षण हैं, आप लोगों ने सुना है कई बार, एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। हरा ये परमात्मा का कौन सा लक्षण है? तटस्थ है, स्वरूप नहीं है। परमात्मा यदि कुछ करता है तो वो उसका तटस्थ लक्षण है। दुख हरण करने वाला परमात्मा, ये जो तुम कह रहे हो, वो परमात्मा का तटस्थ लक्षण है, यौगिक लक्षण है, और जो भी यौगिक लक्षण होगा उसको तटस्थ लक्षण कहा जाएगा। हाँ, कोई भी उसके विशेषणों में क्रिया जुड़ी होगी तो वो तटस्थ लक्षण होगा, और यदि कोई क्रिया नहीं जुड़ी होगी तो वो फिर स्वरूप लक्षण होगा। जैसे सत चित आनंद अद्वितीय, इन विशेषणों में कोई क्रिया नहीं जुड़ी है, क्रिया नहीं जुड़ी है तो वो स्वरूप लक्षण होगा। वो आनंद रूप है तो वो तो स्वरूप लक्षण हुआ, वो अपने भक्तों को आनंद देता है तो वो क्या हुआ? ये क्योंकि देता है ना, क्रिया जुड़ गया ना, अपने में हुई हुई आनंद उसको और किसी को बांटता है तो बांटने वाला तो उपाधि वाला होगा। वहां फिर तटस्थ लक्षण आ जाएगा। ज्ञान स्वरूप, ये उसका स्वरूप लक्षण हो गया। वह भक्तों को ज्ञान देता है कहोगे तो वो तटस्थ लक्षण आ जाएगा। जहां उसके विशेषण में क्रिया जुड़ गई वो हो गया तटस्थ लक्षण। जिसमें विशेषण में क्रिया नहीं जुड़ी है वो फिर स्वरूप लक्षण। सृष्टि कर्ता ये हो गया तटस्थ लक्षण। सृष्टि का अधिष्ठान ये स्वरूप लक्षण। सृष्टि का अधिष्ठान स्वरूप लक्षण है, सृष्टि कर्ता तटस्थ लक्षण है। क्रिया जुड़ गया ना उसके विशेषण। हाँ? परिभाषा कर दी ना, तट माने नजदीक, स्थ माने रहना। जैसे हम लोग सामान्य लोक भाषा में कहीं भी नदी का प्रवाह, जल का प्रवाह हो रहा हो तो उसके जल प्रवाह के दोनों साइड में पैरेलल पर समानांतर एक तट रहता है, किनारा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तट। तट का अर्थ क्या हुआ, किनारा, नजदीक है ना, उसी में स्थित रहना। तो जबकि उसके बिना नदी का प्रवाह संभव नहीं है। नदी में खुद प्रवाह है, तट में खुद प्रवाह नहीं है, जबकि वो प्रवाह उसके बिना सिद्ध नहीं है। यदि दोनों तट न रहे तो नदी का प्रवाह भी नहीं रहेगा, समझ गए ना। तो सारे क्रिया, सारे गति को जो अगति होकर स्थित होकर देखता है, गति का कारण होता है तट। यानी अपने मूल स्वरूप में परिणाम विकार लाए बिना सब कुछ करने की क्षमता जिसमें है उसको तटस्थ कहते हैं। जैसे सुवर्ण तटस्थ होगा, अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन लाए बिना सारे आभूषण के रूप में प्रतीत हो जाता है। तो सुवर्ण क्या हो गया, तटस्थ हो गया, क्योंकि सारे आभूषणों का वह उपादान कारण है और वही सारे आभूषण बनता है। लेकिन वो सुवर्ण सारे आभूषण बनने पर भी अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं करता, वो हो गया तटस्थ लक्षण। तो ये तो भाई इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विज शास्त्र योनित्वात् तद् जलानि शान्तोपासीत इत्यादि। ये सब तटस्थ लक्षण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है। स ईश्वर अक्षरौ आत्मानौ प्रधान पुरुषौ ईश ईशत इष्टे देव एक चित सदानंदा द्वितीय परमात्मा। सत है ना, चित सदानंद, सदा चित, सदा आनंद, सदा अद्वितीय, नित्य। हमेशा चैतन्य रहना, हमेशा आनंदित रहना, हमेशा अद्वितीय रहना। वो कभी दो हो कभी एक हो उसके स्वरूप में ऐसा नहीं है। माया के द्वारा सारे सृष्टि की रचना करने पर भी वह खुद अकेले ही है, अद्वितीय है। अद्वितीय शब्द का अर्थ सजातीय विजातीय स्वगत भेद त्रय रहितम अद्वितीयम। एक नहीं कहना, अद्वितीय। इसलिए वेदांत में कभी भी ब्रह्म एक है ये कह तो दिया, ऊपर ये कह तो दिया। एक का अर्थ वन नहीं है, एक का अर्थ अद्वितीय नहीं, वन टू थ्री फोर नहीं है, संख्या की गति वहां नहीं है। जहां संख्या होंगे वहां सावयव होगा, क्योंकि संख्या तो सावयव ही है, संख्या तो सावयव है, एक अंक भी सावयव है, दो अंक भी सावयव है, दो के अपेक्षा एक है, एक के अपेक्षा दो है, तो एक कहते हुए कहीं सापेक्षता ना आ जाए, इसलिए अद्वितीय कह दिया, न द्वितीय, इसलिए अब द्वितीय दो नहीं है तो एक कहां से आएगा, इसलिए अद्वितीय। तस्य परमात्मनः, ऐसा जो परमात्मा है, अविद्यानात्, उस परमात्मा का अविद्यान से, अविद्यानात् कथम अविद्यानात्, योजनात् जीवानाम परमात्मा संयोजनात्, जीवात्मा को परमात्मा के साथ संयोजन करके यानी मिलाकर। तो जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना कैसे होगा, तो तत्त्वमसि आदि भागत्याग लक्षण ज्यादा आजाद लक्षणा का प्रयोग करके विरोधा उपाधियों का हटाकर अविरुद्ध चेतनांश में एकता करना, उसी का नाम यहां योजना, उसी को यहां का योजना। किसको किसके साथ जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ के। जीवात्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ोगे, वैष्णव लोग कहते हैं कि संभव नहीं है, हम कहते हैं संभव है, आर्य समाज कहते हैं संभव नहीं है, हम कहते हैं संभव है। कैसे संभव है, तुम केवल वाच्यार्थ का प्रयोग करते हो इसलिए संभव नहीं, तो वाच्यार्थ में तो हम भी कह रहे हैं संभव नहीं है, वाच्यार्थ में तो हम भी कह रहे हैं ये संभव नहीं है, लक्ष्यार्थ में संभव है, लक्ष्यार्थ में भी जहर लक्षणा से संभव नहीं, अजर लक्षणा से संभव नहीं, भागत त्याग लक्षणा से संभव है। स्त्री को पुरुष बनाने में संभव है कि नहीं, स्त्री को पुरुष बनाना संभव है कि नहीं है? शरीर से संभव नहीं है, शरीर से संभव नहीं है। तुम कहो कि प्लास्टिक सर्जरी कर लेंगे, आज तो कर रहे हैं ना दुनिया भर के, है हा, तो शरीर उपाधि को छोड़ दो तो पुरुष शब्द, पुरुष शब्द प्रयोग किया है, पुरिषु उसति इति पुरुष, पुरी में रहने वाला जो चैतन्य है। अब लक्षणावृत्ति से यदि चैतन्य में तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो चैतन्य क्या होगा, पुरुष है ना। शरीर के साथ यदि तुम पुरुष बनाना चाहो तो संभव नहीं होगा, शरीर का बात करके चाहो तो संभव होगा कि नहीं, यह खत्म हो गई बात। इसीलिए पुरुष और स्त्री में विरोध किसका है, शरीर को लेकर है, मेल और फीमेल का विरोध तो शरीर को लेकर है ना, जो स्त्री है वही पुरुष है, जो पुरुष है वही स्त्री है, पुरुष और स्त्री दोनों एक हैं, तो शरीर से तो संभव होगा नहीं, तो किससे होगा, शरीर के जो विरोध है उनको हटा दो तो लक्षणा में, लक्षणा में एक ही, इसलिए यहां योजनात् शब्द का अर्थ क्या किया, जोड़ना। कैसे जोड़ना, जीव और परमात्मा को लक्षणावृत्ति के साथ, ये सर्वज्ञ अल्पज्ञ, तो सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं होगा, अल्पज्ञ सर्वज्ञ होगा नहीं होगा, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ दोनों एक नहीं हो सकते, फिर कैसे एक करोगे, सर्वज्ञ को अल्पज्ञ से, अल्पज्ञ को सर्वज्ञ से, दोनों को एक कैसे करोगे, सर्व उपाधि और अल्प उपाधि को छोड़ दोगे तो ज्ञान ज्ञान में कोई विरोध नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ का ज्ञान अल्पज्ञ का ज्ञान 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 दोनों एक ही हो जाएगा, तो सर्व उपाधि और अल्प उपाधि से एक संभव नहीं है, एक की उपाधि अल्प है, एक की उपाधि सर्व है, तो सर्व उपाधि वाला अल्प उपाधि नहीं होगा, अल्प उपाधि वाला सर्व उपाधि वाला नहीं होगा, लेकिन उपाधि हटा दो तो इस विधि से योजनात्, जीव ब्रह्म की एकता करने पर, योजना शब्द का अर्थ एकता करने पर, परमात्मा संयोजनात्, कैसे बोले तत्वभावात्, ये तत्वभाव से जीवात्मा को परमात्मा में संयोजन करना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, ये भाष्यकार ने वो संयोजन की विधि बता दी है यहां, अहम ब्रह्मास्मि इसकी वाच्यार्थ से संभव नहीं, लक्ष्यार्थ से भागत्याग लक्षण से संभव है। इति वयच्चा असकृत, और यह तभी होगा एक बार के अभ्यास से नहीं होगा, वयच्चा असकृत बार बार के अभ्यास से, बार बार के अभ्यास से, अनेक बार के अभ्यास से असकृत। अंते अंते शब्द का दो अर्थ किया है शंकराचार्य ने, वयच्चा अंते विषमाया निवृत्ति है ना मूल श्रुति में, विषमाया वयच्चा अंते विषमाया निवृत्ति, तो अंते शब्द का अर्थ क्या हुआ कब, तो दो व्युत्पत्ति दो अर्थ किया है, अंते प्रारब्ध कर्मांते प्रारब्ध कर्मांते, क्योंकि जब तक प्रारब्ध कर्म रहेगा तब तक उपाधि शरीर रहेगा, और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो स्थूल शरीर अन्नमय को समाप्त हो जाएगा, और योजनात जो तत्त्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता जो की गई है उससे संचित और क्रियमाण नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा तो शरीर तो रहेगा, जब प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएगा तो सब कर्मों से मुक्ति हो गई, तो कर्म से जो बंधन था वो खत्म हो गया, तो प्रारब्ध समाप्ति काले प्रारब्ध कर्मांते, तब तो फिर जीवन मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं हुआ ना महाराज, तो विदेह मुक्ति तो हुआ इस श्रुति से है ना, तत्वभावात योजनात विदेह मुक्ति तो सिद्ध हो गया, जीवन मुक्ति तो सिद्ध नहीं ना हुआ महाराज, आपने कह दिया प्रारब्ध समाप्त होगा तब शरीर समाप्त होगा तभी जाकर वह विषमाया निवृत्ति होगी है ना, तभी मुक्त होगा, तो फिर जीवन मुक्ति का क्या होगा महाराज, यद वाह अथवा अंत्य का अर्थ यहां दूसरा भी कर दिया, अथवा स्वात्मा ज्ञान निवृत्ति निष्पत्ति, स्वात्मा ज्ञान निष्पत्ति अंतस तस्मिन स्वात्मज्ञानोदय वेलायाम, निष्पत्ति अंत स्वात्मा ज्ञान निष्पत्ति अंत, यानी स्वात्मा ज्ञान अपने स्वरूप के ज्ञान होने के तुरंत पश्चात, अंत माने बीच में स्पेस नहीं रहेगा, जिसमें अब बीच में अवकाश नहीं रहेगा, स्वात्मा ज्ञान हो जाए और मुक्ति होने के बीच में काल दाल पकाने लग जाएगा तो बंबई में तो दाल जल्दी पक जाए, और कैलाश मानसरोवर में दाल पकाने लग जाओ है, बद्रीनाथ में दाल पकाने लग जाओ, केदारनाथ में दाल पकाने लग जाओ, अमरनाथ में दाल पकाने लग जाओ तो पांच घंटे पकाओगे तो भी नहीं पकने वाला है, प्रेशर कुकर में तो पकेगा, यदि ओपन में दाल पकाने लग जाओ भात पकाने लग जाओ दाल भात किसी हालत में पकने वाला नहीं, क्यों नहीं, नहीं दाल भात पकाते ही नहीं थे, पकता ही नहीं था तो क्या पकाना है, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड में हवा का प्रेशर नहीं होने से वहां गलता ही नहीं कोई वस्तु है, गलता ही नहीं, सब्जी भी नहीं गलती है, है? खाते हैं ना, भूखे तो मरते नहीं है, नहीं नहीं सूखा चीज खाते हैं, चना खाते हैं भूंज के ले जाते हैं खाते हैं, सत्तू ले जाकर खाते थे, चूरा ले जाकर खाते थे, है ना, चूरा यहां तैयार होता है वहां लगे खा लिया। तो आप तो सभी पकाते हैं ना, प्रेशर कुकर से गलाते हैं, रोटी पक जाती है, रोटी को गलाना तो है ही नहीं है, गांव के जो अवयव अब तो पहले ही शिथिल हो चुके हैं, ले रोटी पक जाती है। रोटी पकने में भी समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं पकती, कोई हवा का दबाव नहीं होता है ना, वहां प्रेशर नहीं होता है, तो आप कुकर में डाल दो तो अरे हम तो अब भुक्तभोगी है। जब पहली बार कैलाश मानसरोवर पैदा यात्रा किया तो ताकलाकोट है, डॉक्टर साहब को तो पता है ताकलाकोट, लिपुलेख क्रॉस करके जब ताकलाकोट पहुंचे तो वहां हमने क्या किया कि अब वहां तो सत्तू चिवड़ा ड्राई फ्रूट खा लेंगे, दो चार पांच दिन का मामला है, अब ये सब प्रेशर कुकर केरोसिन स्टोव वो लिपुलेख के जो चढ़ाई में ये सब भोग ढो के चलना बड़ा मुश्किल है, तो इसको इधर ही रख देते हैं रास्ते में किसी होटल में गांव में, और वहां खाली ड्राई फ्रूट खा लेंगे, सत्तू खा लेंगे, चूड़ा खा लेंगे, ड्राई फ्रूट खा लेंगे, लेके गए। कहां वो खाया जाए, वो तो खाया ही नहीं गया, एक दिन खाए, दो दिन खाए, सत्तू कब तक खाए, और ड्राई फ्रूट ले गया था सब पिट्ठू खा गया, वो हमसे आगे आगे दौड़े वो पिट्ठू लेकर झोला लेकर, एक घंटा दो घंटे का दूरी हो गया, वो पहले पहुंचता था उसको सब झोले में क्या क्या खोज लिया, तो ड्राई फ्रूट था, वो बैठ के वो खाता था, अब हम पहुंचे तो ड्राई फ्रूट है ही नहीं, कहां गया, मतलब महाराज हमको भूख लगी खा गया, ऐसे खत्म हो गई बात। तो हम ताकलाकोट गए तो बर्तन मांग ली बोटियों से और चावल खरीद लिया और थोड़ा लकड़ी, फिर वहां न मिले बड़ा मुश्किल, लकड़ी खरीदी तो पकाने लगे तो ओपन डेक्ची में पकाने लगे तो पके ही नहीं, फिर लकड़ी खरीद के लाए, फिर पकाने लगे पके ही गले ही नहीं, फिर खरीद के लाए फिर गले ही नहीं। तो एक वहां गोरखाली था नेपाली व्यापारी, उसने आके देखा हमारी हालत को, बुरा हाल है, तो नेपाली भाषा हम बोलते थे वो नेपाली भाषा में बोलने लगा, महाराज कुकर के बिना यहां तुम्हारे दाल और भात गलता नहीं। अरे भाई कुकर तो हमने वहीं छोड़ दिया रास्ते में, अब क्या करें। तो बोले फिर उसने अपने जाया गया कुकर लेके आया, अब देखो समस्या, वो कुकर वहां तो मीट पकाने में प्रयोग करता था, अब हम दाल पकाए भात पकाए खाएं कि नहीं खाएं, अब क्या करें महाराज, तो आपातकाल में तो करनी ही पड़ती है। फिर उसको ले जाके नदी किनारे खूब रेत लगाकर खूब माजा, खूब धोया, खूब माजा, फिर उसके बाद अग्नि में उसको सेका, सुकई एकदम सेका अग्नि में, और फिर माना कि भगवान आपातकाल में मर्यादा नहीं रहती है, पथे शूद्रवत आचरेत, पथे शूद्रवत आचरेत, पथि में मार्ग में संभव हो तो आचरण ठीक से करो, नहीं तो शूद्र जैसा ही व्यवहार करो। तो पकाया और खाया तब जाके बड़ी तृप्ति हुई। तो ज्ञान होने के बाद मुक्ति के बीच में वह काल का दाल नहीं गलता, काल कहेगी रुको रुको नहीं नहीं चलेगा, ज्ञान हुआ कि तुरंत, इसलिए अंत शब्द प्रयोग किया यहां भाष्यकार ने, यह अर्थ कर दिया है, यद्वा स्वात्मज्ञान निष्पत्ति रनंतर अनंत तस्मिन स्वात्म ज्ञानोदय वेलायाम विस्माया निवृत्ति ही सुख दुख मोहात्मका शेष प्रपंच रूप, यही है विस्माया, उसकी सब निवृत्ति हो जाना ही वो यच्छान्ति विस्माया निवृत्ति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।